فقط حیدر فقط حیدر امیر المومنین فقط حیدر فقط حیدر امیر المومنین. فقد قال الله تبارک و تعالی فی کلامه المجید بسم الله الرحمن الرحیم ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عبادت کا بہترین اجر عنایت فرمائے، مولا متقیان کی ولادت کی خوشی میں اس جشن کا جو اہتمام کیا گیا ہے، خدا اہتمام کرنے والے اس خانوادے کو اجر عظیم عطا فرمائیں، ان کی حاجات کو پورا فرمائیں، دعاؤں کو مستجاب فرمائیں، مشکلات کو آسان فرمائیں، اور جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، مومنات تشریف لائی ہیں جشن میں، خدا سب کی قلبی حاجات کو پورا فرمائیں اور ہم سب کو مولا متقیان کے شیوں میں شمار فرمائیں اور بروز حشر مولا کے ساتھ محشور فرمائیں. قبولیت دعا کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم، چونکہ عموماً جشن جب بھی منعقد ہوتے ہیں تو ایک روایتی انداز ہوتا ہے جشن پڑھنے کا، تو میرا چونکہ وہ انداز نہیں ہے، میں نے آپ سے چند ایک گزارشات اور مولا کے بارے میں دو تین عنوانات ایسے ہیں کہ جن پر آپ سے بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. اور چونکہ ولادت کی خوشی کا موقع ہے تو ضروری ہے کہ انسان کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہو. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ چہرہ بجھا ہوا ہو اور اندر سے کہے کہ میں بہت خوش ہوں، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہوں گے آپ اندر سے تو خوش ہوں گے یقیناً، لیکن ظاہر جو ہے وہ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ خوشی ہے یا نہیں. اللہ اکبر، ماشاء
اللہ، مدینے کے بادشاہ، سبل قبول والے، کالی کملی والے، کشا ہونے والے، سید اللہ کے بابا اور سیان شریف خان کے نانے کے لیے بلان کے لیے انشاءاللہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایک حدیث ہے معصومین سے مروی کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہماری غمی میں غم منائیں. جب ان کے ہاں خوشی ہو تو ہم خوشی منائیں اور ان کے ہاں غم ہو تو غم منائیں. ایک نجف میں ایک مجتہد، ان کے گھر میں عید غدیر کا جشن ہو رہا تھا، سب لوگ آئے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تو جشن کی محفل جاری تھی. تو اتنے میں ان کے خواتین کی طرف سے کچھ رونے کی آوازیں آئیں، تو وہ مجتہد اٹھ کے گئے، اور جب وہ گئے واپس آئے تو وہ رونے کی آوازیں بند ہو گئیں، جشن جاری رہا. جب جشن ختم ہوا، لوگ اٹھ کے جانے لگے، تو اس وقت اس مجتہد نے کہا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ لوگ رک جائیں، تو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جنازہ جو ہے اس میں آپ شرکت کریں. یعنی وہ جو رونے کی آوازیں آئی تھیں، تو لوگوں نے کہا آغا آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا آپ نے، تو انہوں نے کہا آج اہل بیت کی خوشی کا دن تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے غم کی وجہ سے اہل بیت کی خوشی کی محفل کو خراب کروں، تو میں ان کی خوشی میں خوش ہوں. تو ایسے علی کے ماننے والے اس طرح کے شیعہ ہیں دنیا میں کہ جو اپنی غمی پر بھی اہل بیت کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں. ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی خوشی کی محفل ہو، لیکن اگر اس دن اہل بیت کا کوئی غم کا دن ہے تو اس وقت خوشی نہیں ہوگی. اور اسی طرح ہو سکتا ہے ہمارے کسی غم کا دن ہو، لیکن اگر عنوان اہل بیت کی خوشی کا ہے تو وہاں ہم اپنے غم کو بھولیں گے اور اہل بیت کی خوشی میں خوشی منائیں گے انشاءاللہ. دو تین نکات ہیں. ایک تو یہ کہ عالم اسلام میں رسول خدا کے بعد جو بھی اختلاف ہے بنیادی طور پہ وہ عقیدہ امامت پر ہے. امامت کا جو نظریہ ہے اس میں مکتب تشیع کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، جس مکتب اس مکتب کی بنیاد ہی نظریہ اور عقیدہ امامت پر ہے، اور اسی پر باقی مکاتب سے اختلاف، اور آج تک اسی نظریے پر یہ مکتب اس دنیا میں وجود رکھتا ہے باقی ہے. اور اب تو الحمدللہ عالم اسلام کا ایک طاقتور مکتب مکتب اہل بیت ہے کہ جو اپنی حکومت بھی رکھتا ہے اور اپنی ہی اہل بیت کی منطق کے اوپر ایک حکومت بھی چلا رہے ہیں. ایران میں جو اسلامی حکومت ہے وہ اہل بیت کی منطق پر حکومت چلائی جا رہی ہے. امامت کا جو عقیدہ ہے جس پر ہمارا اختلاف ہے، جس پر باقی مکاتب اسلام کے نسبت ہم نے جس نظریے کو رسول اللہ سے لیا اور قبول کیا، کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ تینوں قسم کے کاموں میں اس کی امامت رہتی ہے. دو چیزوں میں اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہیں امامت کے بارے میں. ایک چیز سے ہم اختلاف کرتے ہیں، وہاں سے ہمارا سلسلہ الگ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ امام جو ہے وہ روحانی پیشوا ہے کہ انسانوں کے معاشرے کی جو روحانی ضرورت ہے، معاشرے کی جو معنوی ضرورت ہے اس کو پورا کرے. معنوی اور روحانی ضرورت کو امام پورا کرے. امام روحانی پیشوا ہے، کوئی شک نہیں ہے. دوسرا ہے کہ امام معاشرے کی اخلاق و عادات کو سنوارنے والا اور شریعت کا بیان کرنے والا، شریعت بیان کرے، تہذیب سکھائے، اخلاق و عادات کو سنوارے، یعنی سمجھے ایک علمی اور تعلیم دینے کا کام. یہ دوسرا کام ہے جو معاشرے کی تہذیب کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے امام نے انجام دینا ہے. تو سمجھیں معاشرے کو شریعت سکھانے کی جو مرکزیت ہے وہ بھی امام کو حاصل ہے. ان دو باتوں میں تمام عالم اسلام کے مکاتب ان دو باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امامت کا کام یہی ہے، اور ان دونوں باتوں کے اوپر مسلمان متفق ہیں سوائے چند ایک کے کہ رسول اللہ کے بعد پہلے امام مولا علی ہیں. پہلے امام مولا علی ہیں، اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ان دو باتوں میں کہ روحانی پیشوا ہے اور علمی پیشوا ہے. مکتب تشیع کا جو نظریہ اور عقیدہ الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، وہ تیسرے نمبر پہ جو بات ہے اس سے ہوتا ہے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ امام روحانی پیشوا بھی ہے، شریعت کا بتانے والا بھی ہے، اور حکومت کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے. جو شریعت بتانے والا ہے یعنی جو لوگوں کی معاشرے کی روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو معاشرے کی علمی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اسی کے پاس حق ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر حکومت کرے. حاکمیت جو ہے، حکومت جو ہے، اس کا حق بھی اسی امام کو حاصل ہے. یہاں سے جدا ہوتی ہے بات. یہاں سے ہم لوگ اس پر ہیں، یعنی ہم لوگ کس چیز کے قائل ہیں؟ ہمارے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے نزدیک، دین جو ہے اسی کو حق ہے. جو دینی پیشوا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ معاشرے کا حاکم ہو، وہ معاشرے پر حکومت کرے. حکومت کا حق اس کو حاصل ہے. یعنی مکتب اہل بیت کے ماننے والے دین کو حکومت سے جدا نہیں سمجھتے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام فقط روحانی پیشوا ہے یا ہمارا امام فقط علمی پیشوا ہے. ہمارا امام ہمارا حاکم نہیں ہے. یہاں سے اختلاف ہے، یاد رکھیے گا. اب ایک مشکل یہ بنی ہوئی ہے، یہ وہ بنیادی نظریہ تھا کہ جس پر مکتب اہل بیت وجود میں آیا ہے، جو رسول اللہ کے بعد سے مکتب اہل بیت نے مولا علی کو اپنا امام اول، امام اول سے مراد جہاں روحانی پیشوا ہیں، جہاں علمی پیشوا ہیں، وہیں پر حاکم بھی. یہ بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے مکتب اہل بیت کا. لیکن اب مشکل یہ بنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ شیعہ اور اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی वो लोग भी इस चीज़ के कायल होने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं कि हुकूमत का सियासत का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दीन सियासत से जुदा है। इसी नज़रिए पर तो खिलाफत को हटाया गया था इसी ख़ानदान अहलेबैत से कि रूहानी पेशवा मौला अली होंगे। हत्ता अहले सुन्नत, हत्ता उनके बड़े बड़े उलमा भी इस तरह की बातों का इज़हार करते हैं। ताहिरुल कादरी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में यह बात की हुई है कि हम 12 इमामों के मानने वाले हैं, उन्हीं को अपना रूहानी पेशवा समझते हैं, उन्हीं को अपना इल्मी पेशवा समझते हैं। कबूल है, इसमें हमारे साथ वो भी शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ से मकतब अहले बैत अलग हो रहा है वो इस बात पर है कि रसूलुल्लाह के बाद अगर हुकूमत की जगह पर बैठने का किसी को इख्तियार था तो वो भी मौलाए मुत्तकियान ही थे, उन्हीं के पास हक की हुकूमत है। तो आज भी ऐसा है। अच्छा, यही नज़रिया ना बाद में भी, अगर आप सोचें, गौर करें, सवाल अगर पूछा जाए आप मोमिनीन से, इस वक्त जो मेरे सामने बैठे हैं, अगर हमसे सवाल पूछा जाए, हमारे जो मासूमीन 12 इमाम जो गुज़रे, 12वें इमाम पर्दे गैबत में, 11 इमाम इस दुनिया में रहे, शहीद हुए, इस दुनिया से रुखसत हुए, सवाल अगर पूछा जाए क्या हमारे आइम्मा ने कोई सियासी हिकमत अमली, कोई सियासी तहरीक, हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें, क्या इस तरह का कोई काम भी किया हुआ है? क्या हमारे सहनों में, हमारे सुनने वाले मजमे को, हमारे लोगों को, मोमिनीन को, मोमिनात को, बच्चों को, बड़ों को, क्या ये बात बताई गई है कि आपके आइम्मा, हर इमाम ने अपने दौर में उस हुकूमत को कि जो हक है उस इमाम का, उसको हासिल करने की जद्दोजहद की है, चाहे चौथे इमाम हो, चाहे पाँचवें इमाम हो, छठे इमाम हो, सातवें, आठवें इमाम, नौवें इमाम, दसवें इमाम, ग्यारहवें इमाम तक, हर इमाम ने उसी के लिए कोशिश की है, क्या इस तरह की बात की जाए? तो आसानी से समझ में नहीं आती ये बात लोगों के जहन में, आते क्या मतलब, क्या हमारे आइम्मा भी हुकूमत को हासिल करने के लिए जस्तजू करते थे? क्या वो कोई तहरीक चलाते थे? क्या वो कोई मुनज़्ज़म काम करते थे? सवाल ये है आप लोगों से, अगर दो मिनट के लिए हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि नहीं, हमारे आइम्मा इस तरह के कोई काम नहीं करते थे, वो हुकूमत को हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे कि अलवी हुकूमत दोबारा कायम हो जाए, क्योंकि इमाम जो इमामत का हमारा अकीदा है ना, ये अकीदा, ये नज़रिया हुकूमत का नज़रिया है। आज के दौर में भी रसूलुल्लाह जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उस वक़्त रसूलुल्लाह ने क्या बनाया था? क्या रसूलुल्लाह ने फ़कत एक तबलीगी निज़ाम बनाया था? क्या रसूलुल्लाह ने फ़कत एक ऐसी मस्जिद बना ली थी जहाँ पर पेश नमाजी के फ़राइज़ अंजाम देने थे? क्या रसूलुल्लाह ने फ़कत लोगों को अमर बिलमारूफ़ करने के लिए दरवाज़ों पर जाकर तबलीग करना, लोगों को मुसलमान करना, फ़कत रसूलुल्लाह ये काम करके जा रहे थे? या रसूलुल्लाह ने एक हुकूमत कायम कर दी थी कि जिस हुकूमत के तहत में पूरा अरब आ चुका था? आप लोगों की मालूमात के लिए, जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से रहलत कर गए थे तो कितना एरिया था जो रसूलुल्लाह के अंडर में था, हुकूमत में, रसूलुल्लाह की हुकूमत में? अगर हम इसको कहें मदीने के अंडर में, मदीना चूँकि मरकज़ था हुकूमत का, तो मदीने के अंडर में कितना एरिया था जो उस वक़्त रसूलुल्लाह की रहलत के वक़्त आ चुका था? पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, बच्चों को पता है? पाकिस्तान का कुल एरिया ये कितना बनता है, कुल रकबा कितना है पाकिस्तान का? 7,96,000, 8 लाख तकरीबन, कम ओबेश 8 लाख मुरबा किलोमीटर, ये पूरा पाकिस्तान है, चाइना के बॉर्डर से लेकर कराची तक, और यहाँ इस तरफ लाहौर के एंड से लेकर उस तरफ कोयटा के आखिर तक, ये कितने है टोटल? 8 लाख मुरबा किलोमीटर। जब रसूल खुदा इस दुनिया से रहलत कर गए तो 27 लाख मुरबा किलोमीटर की हुकूमत थी रसूलुल्लाह की। जो एरिया अल्लाह के नबी ने कवर कर लिया था वो कितना था? 27 लाख मुरबा किलोमीटर, यानी पाकिस्तान का कम से कम 3.5 गुना बनता है। इस पाकिस्तान के 3-3.5 बराबर एरिया वो अल्लाह के नबी ने हुकूमत कायम की है उस पर। अब जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से रहलत करने वाले हैं तो आपने अगला सिस्टम बताया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के जो नबुवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं, आखिरी नबी हैं, अब इसके बाद तुम लोगों को एक नया निज़ाम दे रहा हूँ कि जो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा, और वो निज़ाम इमामत था, وہ نظام امامت فقط مسجد نبوی کی پیش نمازی کے لیے نہیں تھا، وہ نظام امامت فقط لوگوں کے معنوی یا روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ نظام امامت اس 27 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت کے لیے بھی تھا، یاد رکھیے گا۔ اب دوسرا سوال، اگر ہم فرض کر لیں، دو منٹ کے لیے ہم فرض کر لیں کہ معصومین نے، آئمہ نے کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی، انہوں نے کسی بھی طرح کی حکومت کے قائم کرنے کی کوئی بھی ایسا کام، کوئی تحریک کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر دو منٹ کے لیے اگر ہم اس کو قبول کریں تو آپ سے ایک سوال ہے، پھر ہمیں معصومین کی زندگی میں سے جو جو میرے اور آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے، ہمارے امام ان کے کام کیا ہوتے تھے؟ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ایسا ہے؟ یہ تین کام تو ہے نا، قائم اللیل ہیں، صائم النہار ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک شخص ہے جو رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں علمی باتیں، لوگوں کی علمی پیاس بجھاتا ہے، اس کے ان چار کاموں سے کسی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہے آپ سے، یعنی اس کے ان کاموں سے حکومت کو خطرہ ہو گیا ہے؟ یہ جو راتوں کو عبادت کر رہا ہے، یہ جو دن میں روزہ رکھتا ہے، یہ جو غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، اس لیے اس کو زہر دے کر شہید کروا، گورنمنٹ اس کو زہر دے کر شہید کروائے، گورنمنٹ اس کو زندان میں قید کر دے، اور چھپ کے زہر بھی دیتا ہے تو چھپ کے دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اعلانیہ آ کے آئمہ کو شہید کر رہے ہیں، نہیں، چھپ کے بڑے طریقے سے، اور شہادت کے بعد پھر وہی حکومت باقاعدہ میڈیا پہ بیان دیتی ہے، سیاسی بیان ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے امام کو شہید نہیں کیا ہے، یہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ اپنی عقل سے سوال کریں، کیا آپ کی عقل اس بات پہ قبول کرتی ہے کہ ایک شخص جو رات کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے؟ نوویں امام جب اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے، جب نوویں امام کی شہادت ہوئی، امام محمد تقی علیہ السلام کی، جن کی ولادت کا دن تھا آج، نوویں امام 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 25 سال، اور زہر دے کر شہید کیا، اس وقت 27 لاکھ مربع کلومیٹر رسول اللہ کا دور تھا، اور یہ صرف عرب تھا صرف، اس میں ابھی تک یمن شامل نہیں تھا، اس میں آج کے حساب سے اگر میں آپ کو جگہ بتاؤں، عمان جو آج کا ملک ہے یہ شامل نہیں تھا، عراق شامل نہیں تھا اس میں، ایران شامل نہیں تھا اس میں، اس میں اوپر اگر جائیں تو مصر اور یہ سارا افریقہ کے جتنے ممالک ہیں یہ اس میں شامل نہیں تھے، جو کم و بیش 35 ممالک بنتے ہیں، یہ شامل نہیں تھے اس میں، لیکن جب نو امام کا دور تھا تو اس میں یہ سارا ایریا حکومت میں شامل تھا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، اتنے بڑے ایریے کے حاکم کے لیے خطرہ بن گیا ہے ایک 25 سال کا جوان، ایک 25 سال کے امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر ہے اور اس حکومت کے لیے خطرہ ہے، اور زہر دے کر شہید کروایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تشیع جو ہے معصومین کی زندگی کا یہ پہلو بیان نہیں ہوا ہے زیادہ، جبکہ یہ پہلو موجود ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معصومین کی زندگی کا سیاسی پہلو نہیں بیان ہوتا۔ ہم لوگ ابھی تک جس جہاں تک ہماری پہنچ ہے، ہم لوگ فضائل کی کلاس میں ہیں، ابھی کلاسیں ہیں مکتب اہل بیت میں نا، شیعوں کی سمجھے الگ الگ سطحیں ہیں، پہلی سطح جو ہے وہ فضائل کی کلاس ہے، دوسری فضائل اور مصائب کی کلاس پرائمری لیول ہے، مکتب اہل بیت کا پرائمری لیول ہے کہ جس میں فضائل اور مصائب ہوں گے اور لوگ اسی کو سنیں گے، اسی کو دہرائیں گے، اسی کو سمجھیں گے، اسی پر عقائد رکھیں گے، عقیدے بنائیں گے، قبول ہے، رد نہیں کر رہے، لیکن یہ پرائمری لیول ہے، اس کو ہونا ہے اور اس میں سے گزرنا ہے ہر شیعہ نے، لیکن اس کے بعد ایک مڈل لیول آئے گا، اس کے بعد ہائر سیکنڈری آئے گا، وہ لیول بھی ہے، اس لیول میں کیا ہوگا، پھر وہیں روایات جو فضائل کی ہیں उन्हीं रवायात को आपको समझाया जाएगा कि इसके अंदर से तज़िए से ये बात भी समझ में आती है। मिसाल के तौर पे, अब मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए बात मुश्किल हो रही है, मिसाल के तौर पे मैं और आप खैबर सुनते हैं, ऐसा है ना? अभी तक मैंने और आपने खैबर फ़ज़ाइल वाला सुना है, प्राइमरी लेवल का खैबर हमने सुना हुआ है। मैं आपको मिडिल लेवल का खैबर सुनाऊँ? मिडिल लेवल का खैबर पता है क्या है? यानी जब कभी तुम्हारा टकराव यहूदियों से हो तो अलम अली के हाथ में दे दिया करो, क्योंकि यहूदियों के मुकाबला करने की ताकत अली के पास है। आज के दौर में क्या बनेगा? जब कभी तुम्हारा टकराव यहूदियों के साथ हो तो सरदारी और अलम जो है वो अली वालों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि बाकी मकातिब मुसलमान यहूदियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और तारीख ने साबित कर दिया, यहूबा है 1948 सऊदी अरब, जो आज का सऊदी अरब, उर्दन, इराक, मिस्र, चार मुल्क हैं ये, और चारों मुल्कों ने मिलकर, इनकी चारों मुल्कों की फ़ौज ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया और कुछ ही दिन में शिकस्त खा गए। इसराइल जंग जीत गया। 58 में दोबारा हमला किया है चारों मुल्कों ने मिलकर, और बाकी आलम इस्लाम ने इनके साथ चंदा दिया, कुमक की, इसराइल का मुकाबला किया, फिर शिकस्त खा गए। चार दफ़ा हमला किया है इन चारों मुल्कों ने मिलकर, चार दफ़ा, और एक आध दफ़ा पाकिस्तान ने भी कुमक की है, लेकिन चारों दफ़ा इसराइल से जंग हार गए। और जिस वक़्त इसराइल के साथ जंग हुई है हिज़्बुल्लाह की, 33 दिन में हिज़्बुल्लाह ने शिकस्त दे दी इसराइल को। हिज़्बुल्लाह क्या है? मुल्क है? नहीं, एक तंजीम है, लेकिन फार्मूला रसूलुल्लाह वाला है। फार्मूला जो रसूलुल्लाह ने खैबर में दिया था ना, वो है क्या? जब यहूदियों से टकराव हो तो अलम अली के हाथ में दे दूँ, फिर यहूदी शिकस्त खा जाएंगे, फिर मरहब मरते हैं वहाँ पर, फिर खैबर के दरवाज़े उड़ते हैं। तब समझ आ रही है? ये मैंने आपको सिर्फ एक नमूना बताया है कि अगर आप प्राइमरी लेवल से ऊपर आएँ तो मिडिल में आएंगे तो होता नहीं है। मैथ की जो प्राइमरी की मैथ जो है उस, वो भी तो मैथमेटिक्स ही है, लेकिन ऊपर जब आते हैं आठवीं में तो नई चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। जब मैट्रिक लेवल में जाते हैं तो उससे अगली चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मसला सिर्फ ये है मेरा और आपका, हमारी कौम का बिलखसूस, हम अभी प्राइमरी लेवल में हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं हैं दुनिया से। बाकी तमाम आलम में जितने भी शिया हैं, प्राइमरी लेवल में हम उनसे आगे ही हैं, हम बेहतर हैं उसमें। सिर्फ ये है कि अभी हम मिडिल लेवल में आना नहीं चाह रहे, हमें लग रहा है कि नहीं, प्राइमरी में जो हम टॉप कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है अगर हम मिडिल में चले गए ना तो फेल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, बच्चों को जब नई क्लास में, अब चूँकि बच्चे बोर हो रहे हैं इसलिए, जब आप लोग नई क्लास में जाते हैं, क्लास वन में पास हुए, क्लास टू में गए, क्लास टू का पहला दिन है, जो बुक्स आपकी हैं क्लास टू वाली, पहले दिन में समझ आती हैं? आती ही नहीं है समझ, वो किताबें उनकी हजरत तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। लेकिन जब एक साल ख़त्म हो जाता है, जब आप टू क्लास का एक साल ख़त्म करते हैं, तो साल के एंड पे वही बुक्स जो पहले आपको समझ भी नहीं आ रही थी, उन्हीं बुक्स का आप इम्तहान दे रहे होते हैं। ऐसा होता है? अहसन, समझ जाए आप लोग भी, हम लोग भी समझे इसी से। ये जो प्राइमरी लेवल से हम ऊपर नहीं आ रहे तो आएंगे, पहले पहले मुश्किल ही लगती है, जैसे आज आपको मुश्किल लग रही है कि ये जश्न में किस किस्म की बातें हो रही है। ये मसला वही है, आप पहली क्लास ही समझें। लेकिन अज़ान मोहतरम, अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो हम फिर इम्तिहानात देने की तैयारी भी करेंगे, हम आजमाइशों से गुजरने के लिए भी तैयार होंगे। बस मेरा और आपका जो अकीदे इमामत है, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेस पर हमारा पूरा मकतब खड़ा है, वो है ही इसी पर कि हमारा इमाम हमारा हाकिम है। हम अपने इमाम के अलावा किसी को हाकिम ही नहीं समझते। हम पर हुकूमत करने का इख्तियार इमामत के सिलसिले को हासिल है, और पर्दे गैबत में उसका बेहतरीन हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। फकीह की हुकूमत उसी विलायत का तसलसल है, हमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिस तरह कूफे के लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी कि मुस्लिम के साथ वफा करोगे तो हुसैन इब्न अली तुम्हारे दरमियान आएंगे। मुस्लिम इब्न अकील आए थे ना कूफा, नुमाइंदा है इमाम का, इमाम नहीं है, नायब इमाम है, और वहाँ कूफा के लोगों से जो बेयत ली है तो इमाम के लिए ली है। मुस्लिम ने अगर कूफा में हुकूमत कायम की तो हुकूमत की गद्दी पर मुस्लिम बैठा है, लेकिन हुकूमत असल में हुसैन इब्न अली की है। और अगर आज आपको हुकूमत इस्लामी जो ईरान में कायम हुई उसकी गद्दी पर, उसकी कुर्सी पर सैयद अली खामेनाई नज़र आता है, तो वो कुर्सी पर सैयद अली खामेनाई हैं, लेकिन हुकूमत हुज्जत इब्न हसन की हुकूमत है, इमाम ज़मान की हुकूमत है। कैसे पता चल रहा है आपको? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सादा सा कुलिया आपको देता हूँ, इमाम ज़मान की हुकूमत है भाई। अगर ये सिर्फ ईरान की हुकूमत होती तो इराक के अंदर, इराक अलग दूसरा मुल्क है ना, अलग मुल्क है, शाम अलग मुल्क है, ईरान एक मुल्क है। अगर ये सिर्फ एक मुल्क की हुकूमत होती, ईरानियों की हुकूमत होती, तो इराक के अंदर दाइश आ गया है तो ईरानियों को क्या तकलीफ़ है भाई? क्या मुश्किल है ईरानियों को? इराक एक अलग मुल्क है, इराक की अपनी हुकूमतें हैं, न ज़ुबान एक है, इराक और ईरान की ज़ुबान अलग है, कल्चर अलग है, कौमियत अलग है, वो अरब है ये अजम है। इतने इख्तलाफात और तफरीक के बावजूद, लेकिन जब इराक के अंदर जो ही दाइश का ज़हूर होता है, दाइश सामने आती है, तो क्या आयतुल्लाह खामेनाई और उनकी फ़ौज नहीं आई इराक के अंदर? क्यों आए? क्योंकि हुकूमत इमाम ज़मान की है ये। और जहाँ पर बात आई कि करबला और नजफ़ और इन मुकद्दसात को ख़तरा है, तो ईरान ने अपनी पूरी फ़ौज, न सिर्फ फ़ौज, जितने अखराजात हुए हैं इराक की जंग में, अब तो इराकियों ने ख़ुद वो डॉक्यूमेंट्रीज बना के बताई कि जितने अखराजात हुए सारा वहाँ से आए, ईरान ने दिए। इसी तरह शाम में जब जनाब ज़ैनब के रोज़ा ख़तरे में आया तो वहाँ पर पहुँच गए। ये असल में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हुकूमत आयतुल्लाह खामेनाई, अगर ज़ाहिर सामने हमें कुर्सी पर आयतुल्लाह खामेनाई नज़र आ रहे हैं हुकूमत पर, तो हुकूमत असल में इमाम ज़मान की है। एक जुमे के खुतबे में आयतुल्लाह खामेनाई ने, आज से चंद साल पहले जुमा पढ़ाया, उस जुमे के खुतबे में आयतुल्लाह खामेनाई ने आखिर में पूरा खुतबा दिया, आखिर में कहा कि मैं चंद जुमले अपने इमाम से कहना चाहता हूँ, इमाम ज़मान से, और इमाम ज़मान को मुखातब करके जुमे के खुतबे में आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि ए मेरे मौला, ये हुकूमत आपकी है, अगर मेरी कोई इज्जत और आबरू है तो ये भी आपकी वजह से है। कहा मेरी कोई हैसियत नहीं है, आयतुल्लाह खामेनाई कह रहे हैं कि जिनके नाम से पूरी दुनिया लरज रही है, दुनिया का बातिल डरता है जिनसे, वो रोते हुए कह रहे हैं खुतबे में, जुमे के खुतबे में, ए मौला इमाम ज़मान, ये हुकूमत साहिब इन हुकूमत आप हैं, यानी इस हुकूमत के मालिक आप हैं, मेरा काम तो सिर्फ आपके अहकामात की पैरवी करना है। तो याद रखें अकीदे इमामत क्या है, अकीदे इमामत ही यही है, हमारा नज़रिया इमामत ही यही है कि हमारा जो इमाम है वही हमारा हाकिम है। इसी तरह हमारा अकीदे नबुवत भी यही है। तवज्जो करें, मुश्किल फिर वही, मैंने आपको शुरू में मसला बता दिया है, लेकिन आप कोशिश करें, क्लास का आगाज़ हो रहा है तो पहले पहले किताबें मुश्किल लगती हैं, लेकिन साल गुजर जाते हैं तो उन्हीं किताबों के बच्चों ने बताया कि वो इम्तिहान भी दे देते हैं। बस हमारा अकीदे नबुवत भी इसी तरह से है। क्या है अकीदे नबुवत? अकीदे नबुवत ये है कि जिस दौर में फिरौन और मूसा दोनों हों, तो हमारा अकीदा यह है कि लोगों पर हुकूमत करने का इख्तियार मूसा का है, फिरौन के पास इख्तियार नहीं है। इब्राहिम और नमरूद जब हों तो नमरूद के पास हक़ हुकूमत नहीं है, हक़ हुकूमत इब्राहिम के पास है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक और मौजू, इस मौजू की कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ी बहुत इंशाल्लाह आगाज़ हो गया, इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौके पर इस तरह के मौजूदात पर बात होनी चाहिए और जश्न की महफिल से ही शुरू हो, यानी हम समझें प्राइमरी से मिडल में आ जाए, मिडल सेक्शन का, मिडल लेवल का जश्न अब होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको खैबर की हल्की सी वो मिसाल दी है। अब आते हैं दूसरा मौजू, दूसरा मौजू क्या है? बड़ी शख्सियात जो होती है ना, बड़ी शख्सियात, उनके बारे में इख्तलाफ हो जाता है उनके बाद। इस्लाम के अंदर, इस्लाम की तारीख़ में मौलाए मुत्तकियान एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अली इब्न अबी तालिब एक बहुत बड़ी शख्सियत, अब क्या है, जब शख्सियत बड़ी होती है ना तो बाद में दावेदार बन जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वो हमारे थे, कुछ कहते हैं कि वो हमारे थे, गुरोह बन जाते हैं। एक गुरोह कहता है कि अली वाले हम हैं, एक गुरोह कहता है कि अली वाले हम हैं, एक गुरोह कहता है अली वाले हम हैं। ये मौजू ऐसा है कि ये मौला अली की शख्सियत पे ही नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का मौजू रहा है, पहले भी अम्बिया के मामले में भी एक मौजू रहा है। वो मौजू किसका था? वो था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तवज्जो है आप लोगों की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बड़ी शख्सियत थी, अम्बिया में एक बड़ा नाम था, और उनके सिलसिले में इब्राहीम के बाद के सारे अम्बिया, सारे नबी इब्राहीम की नस्ल से आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद के तमाम अम्बिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। तो यूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत बहुत बड़ी थी। तो यहूदी कहते थे कि इब्राहीम हमारे हैं। जो यहूदी बन गए उन्होंने कहा कि इब्राहीम हमारे, हम इब्राहीम के हैं। ईसाई जो है नसरानी, वो कहते थे इब्राहीम तो हमारे हैं, यहूदियों के नहीं हैं। और जब मुसलमान आलम इस्लाम जब वजूद में आया, रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाए, तो मुसलमानों ने भी कहा नहीं भाई इब्राहीम तो हमारे हैं। अब ये इख्तलाफ है, यहूदी कहते हैं इब्राहीम हमारा, ईसाई कहते हैं इब्राहीम हमारे, मुसलमान कहते हैं इब्राहीम हमारे। तो अब ये मौजू ऐसा है कि इसको अल्लाह ने क़ुरान मजीद में जगह दे दी, और इस मौजू को कुरान में अल्लाह ने हल कर दिया, अल्लाह ने इब्राहीम का मौजू हल कर दिया। इब्राहीम मियार है, सिंबल है। इसके बाद भी इस तरह का मौजू आ जाए, कोई बड़ी शख्सियत हो कि जो अल्लाह वाली शख्सियत, यानी जो खुदा के औलिया में से बड़ी शख्सियत हो, और बाद में इख्तलाफ हो जाए, कोई कहे कि मौला अली के बारे में हम जो अहले सुन्नत भी कहते हैं कि मौला अली के बारे में जो हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया वो ठीक है। बहुत सारे तबकात हैं, अब तो अहले तशियों के अंदर भी मुख्तलिफ नज़रियात बन चुके हैं कि मौला अली के बारे में जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मसला अल्लाह ने हल कर दिया है। मैं आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला बता रहा हूँ, आपको मौला अली वाला मौजू ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम, इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु। इन्ना यकीनन औलन्नास, औला ये विलायत से है जिससे मौला बनता है, ये जो मादा है वहीं है, वली से। इन्ना औलन्नास नास बिइब्राहीम, बेशक इब्राहीम की विलायत में वो है। अगर इसको मैं मज़ीद सादा करूँ तो इब्राहीम की विलायत में वो लोग हैं, या इब्राहीम का करीबी वो है, या वो जो कहते हैं ना इब्राहीम हमारे हैं। अब अल्लाह कह रहा है इब्राहीम उनका है। इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम, लोगों में से अगर तुम ये देखना चाहो कि लोगों में से इब्राहीम का कौन कौन है, इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम, लोगों में से इब्राहीम का वो है कौन, लल्लज़ीना तबऊहु, जिसने इब्राहीम की पैरवी की, जिसने इब्राहीम की पैरवी की। इब्राहीम का वो है कि जिसने इब्राहीम की पैरवी की। अब हदीस सुने, मौला की हदीस है, फरमाते हैं कि फमन, एक हदीस में पांचवें इमाम से नकल है, फमन तबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। किसी ने आके मौला से कहा मौला मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ, वहाँ पर बहुत से लोग दावेदार हैं कि आपके शिया हैं, हम सब बहुत से हमारे इलाके में बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि आप, हम आपके शिया हैं, तो क्या आप उनकी तस्दीक करते हैं? तो पांचवें इमाम ने जो जुमला कहा वो ये था, फ़मन तबियानी फ़मन तबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, उनमें से जो जो हमारी इत्तबा करता है वो हमारा है, जो जो हमारी इत्तबा करता है वो हमारा है। फ़मन तबियानी, इत्तबा और इताअत में फ़र्क है, इत्तबा और इताअत में फ़र्क है। इत्तबा किसे कहते हैं? इताअत का मतलब क्या होता है? इताअत ये होता है कि कुछ मामलात में, कुछ चीज़ों में बात मानना। इताअत में ये होता है कि ज़ाहिर है कि एक ख़ास शक्ल में होती है, उसके अलावा ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है, इत्तबा का मतलब क्या है? इत्तबा का मतलब है पीछे पीछे चलना, कहीं पर भी दाएं बाएं नहीं होना, बिल्कुल पीछे, एक्यूरेट पीछे पीछे चल रहे तो इत्तबा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहचान दे दी पांचवे इमाम ने, कहा मौला सब कह रहे हैं कि आपके शिया हैं, आप तायद करते हैं, पांचवे इमाम ने उसूल दे दिया, कहा फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो हमारी इत्तबा करेगा वो हमारा है। इसका मतलब जो इत्तबा नहीं कर रहा उसकी गारंटी नहीं ली जा रही, उसकी ज़मानत नहीं ली जा रही। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दूसरा मौजू, अब तीसरा मौजू। तो अब ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपका बीपी चेक करते हैं, फिर आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, ऐसा ही है, टीका आखिर में लगता है, ऐसे ही होता है, पहले ज़रा सहला के आपको तैयार करके उसके बाद फिर टीका लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं टीका लगा रहा हूँ, सिर्फ ये है कि मैं एक मौजू आपके सामने और दो वाक़यात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौजू क्या है? मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन की जो शख्सियत है इसमें दो किस्म की सिफात पाई जाती है। एक सिफात की वो किस्म है कि जो अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। कुछ सिफात ऐसी हैं अमीरुल मोमिनीन की कि उन सिफात की वजह से हर कोई अट्रैक्ट नहीं होता, उन सिफात की वजह से कुछ लोग फिर भागते भी अमीरुल मोमिनीन से, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कहें अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत में कुछ जाज़िबा सिफात हैं कि जो अपनी तरफ खींचती हैं, और कुछ दाफिया सिफात हैं कि जो गड़बड़ को ख़ुद से दूर कर देती हैं। मैंने और आपने चेक करना है कि हम जो अली वाले हैं हम जाज़िबा सिफात में अली के हैं और दाफिया में भी अली के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जाज़िबा सिफात में अली के साथ खड़े हैं दाफिया में फ़रार कर जाएं। मैं आपको दो वाक़यात सुनाता हूँ, समझ आएगी, मज़ीद थोड़ा सा खोलता हूँ। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जाज़िब सिफात कौन कौन सी हैं? मसलन रहम करना, मौला अली रहम करते थे, ये ऐसी सिफत है जो जाज़िब है। मौला अली सखी हैं, सखावत जाज़िबा सिफत है। मौला अली मुश्किल कुशाई करते हैं, जो मुश्किल में हो उसकी मदद करते हैं, जाज़िब सिफत है। भूखे को खाना खिलाते हैं, जाज़िब सिफत है ना, जाज़िब सिफत। आज आप दुनिया में देखें क्या हिंदू मौला अली का कसीदा नहीं पढ़ता? देखा है ना आपने, सिख को नहीं देखा मौला अली का कसीदा पढ़ते हुए? मैं आपको एक शख्सियत बताऊंगा जिसने मौला अली का कसीदा पढ़ा है, आप हैरान हो जाएंगे तारीख में, अमर इब्ने आस। अमर आस जिसको कहते हैं ना, जंग सिफीन में जिसने मौला के वार से बचने के लिए लिबास उतार दिया था अपना, अमर आस से आशनाई है ना, नाम सुना है अमर आस का? अमर आस ने कसीदा लिखा है मौला अली की शान में, और शहादत के वक़्त उसने गिरिए किया है मौला अली के ये कसीदा पढ़ते हुए। मुआविया को सुनाया किसको है? अमीर शाम को। अमर आस ने ये कसीदा लिखा शहादत अमीरुल मोमिनीन के बाद, मुआविया को बताया मैंने अली की शान में कसीदा लिखा है, अली का कसीदा मुआविया को सुनाया और रोए अली को याद करके। कसीदा अमर आस ने भी लिखा है। जाज़िब सिफात वो हैं कि जिसकी वजह से गैर भी पसंद करता है। देखिए आज के दौर में आप देख रहे हैं सिख भी मौला अली का कसीदा पढ़ रहा है, अली अली करने को पसंद करता है, गैर मुस्लिम भी अली को पसंद करता है, सब पसंद कर रहे हैं। मुसलमान के तमाम, मुसलमानों के तमाम मकातिब मौला अली को पसंद करते हैं। जाज़िब सिफात रहम, अतूफत रहमत, शिजात बहादुर है मौला अली, शिजात ऐसी सिफत है जो शुजा न हो वो भी पसंद करता है। जैसे होता नहीं है चोर जो होता है ना वो चोरी से नफरत करता है, वो बता रहा होता है कि चोरी ठीक काम नहीं है, जो खुद शुजा ना हो फिर भी वो शुजा को पसंद करता है, जो खुद बहादुर नहीं होता ना लेकिन पसंद वो बहादुर को ही करता है। तो ये वो सिफात हैं कि जिसमें मौला अली की तरफ लोग खींचते हैं, जाज़िब सिफात हैं। कुछ सिफात दाफे हैं, मसलन अदालत, अमीरुल मोमिनीन अदालत से काम लेंगे। अदालत वो सिफत है जो भगा देती है, नहीं टिक पाता कोई भी। अब सुने, अब मैंने और आपने इन दो, मैं आपको तारीख के दो वाकयात सुना रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन के दौर के दो। अब हमने गौर करना है कि हम दोनों में से किस जगह पे खड़े। नज्जाशी, नज्जाशी शायर है और अमीरुल मोमिनीन के लश्कर का सिपाही था। जमल में, जमल में मौला अली के लश्कर की तरफ से लड़ चुका है। सिफीन में भी मौला अली के लश्कर की तरफ से लड़ चुका है और शायर था। जब शायर कहें तो हमारे जहनों में ना, आवाम के जहनों में, अब मैं दोबारा बात करनी है अगर आप मुतवज्जे हो तो, प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल। एक प्राइमरी लेवल का शायर होता है, जब आपसे कहा जाए ना कि ये मौला अली के दौर में शायर था, तो फौरन हमारे जहन में शायर से मुराद क्या आती है, जो आज हम शोरा को देखते हैं, कसीदा लिखने वाला, नोह लिखने वाला, अशार लिखने वाला, यही आता है ना हमारे जहन में। ये प्राइमरी लेवल का जो जिस समझ है। मिडिल लेवल में आए तो पता है शायर का मतलब क्या है। उस ज़माने में, अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में, तारीख में, उस वक्त जब उस ज़माने में मीडिया जो है ना, मीडिया, टेलीविज़न नहीं होता था, टेलीविज़न नहीं है लोगों के दरमियान, अखबारात नहीं है लोगों के दरमियान, किसी हुकूमत के बारे में राय हमवार करना, लोगों के जहनों को हुकूमत के बारे में आमादा करवाना, हुकूमत के कामों की तरफ उनकी तशवीक करना या हुकूमत पे तनकीद करना, ये काम उस ज़माने में शायर का होता था। और अमीरुल नज्जाशी का ताल्लुक अमीरुल मोमिनीन के दरबार से, इसका मतलब क्या है, नज्जाशी लोगों के दरमियान में अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के बारे में लोगों के जहन तैयार करने वाला है। समझे, आज के दौर में जो मीडिया का काम है ना, मीडिया जो इस वक्त है, उस ज़माने में शायर का ये काम होता था, शायर को ये मकाम, ये प्रोटोकॉल शायर का होता था। इसीलिए दरबारों के अंदर शायरों को खुसूसी प्रोटोकॉल होता था, उनको अतियात, उनको नवाजिशें की जाती थी, ज़मीनें दी जाती थी। क्यों? क्योंकि जाके वो आवाम के दरमियान में उस हुक्मरान और उस हुकूमत के बारे में राय हमवार करते थे। अब समझ आ रही है, शायर नज्जाशी शायर है, अमीरुल मोमिनीन के लश्कर का सिपाही भी है। एक दिन रमज़ान का महीना है, रोज़े, नज्जाशी अपने घोड़े पे बैठ के कूफा में आ रहा है, तो इसका एक दोस्त था शायर, तो वो रास्ते में इसको मिला, तो इसके दोस्त ने नज्जाशी से कहा, जब ज़ाहिर वो भी शायर था, नज्जाशी का दोस्त था, शायर था, उतरे गपशप लगी, तो जो नज्जाशी का दोस्त था शायर, उसने इससे गपशप की, कहा कि रात को एक दुम्बा ज़िबा किया था और उसको साफ करके उस पर मसाले शसाले लगा के तंदूर में उसे दबा दिया था, वो जो पूरा जो दुम्बा पकाते हैं तंदूर के अंदर, वो ऊपर से बंद करके, तो कहता इस वक्त वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, नज्जाशी को कह रहा है, बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैं अकेला हूँ, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं खाऊं, अगर तुम आ जाओ ज़रा बैठ के कोई शायरी की महफिल भी कर लेते हैं तो दुम्बे से। उसने कहा मेरा रोज़ा है, नज्जाशी ने कहा, उसने कहा कज़ा कर लेंगे बाद में, क्या मुश्किल है, दुम्बा तो तैयार है, इसकी तो कज़ा नहीं होती। खैर चला गया और बैठ के ज़ाहिर अशआर वगैरह का तबादला भी हुआ और दुम्बा खाना शुरू कर दिया। तो दुम्बा खाते खाते नज्जाशी के दोस्त ने, शायर ने कहा, खाली दुम्बे का मज़ा नहीं आ रहा, मेरे पास यमनी शराब है, अगर कहो तो। अब वही शायरी का माहौल सारा बन चुका था, एटमॉस्फेयर तैयार हो गया था, तो वहाँ नज्जाशी जो है वो शराब भी दोनों ने पी दबा के। अब जब शराब पिए तो नशे में आ गए, नशे में आके उन्होंने, ये घर से बाहर आ गए, बाहर आके गलियों में जो है वो फिरने लगे, तो अब ज़ाहिर लोगों को पता चल गया कि तो नशे में है और रमज़ान में पकड़ लिया, तो पकड़म उसमें पकड़ते वक्त में नज्जाशी तो पकड़ा गया, दूसरा भाग गया। अब नज्जाशी पकड़ा गया, उन्होंने कहा हम तुम्हें अली के पास लेकर जाएंगे, नज्जाशी ने कहा चलो जी ठीक है, मसला हल हो गया, क्योंकि नज्जाशी को पता था कि मौला अली के लिए नज्जाशी अहम है, शायर है, जंगों में साथ दिया है, कसीदे कहे हैं जंगों में, सिपाहियों को तैयार किया है, आवाम की राय को हमवार किया है अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के लिए, लेके आए अमीरुल मोमिनीन के सामने लाए, कहा तुमने शराब पी है? उसने कहा जी। तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने कहा इसको 80 कोड़े लगाओ शराब की हुरमत। तो इसके जो नजाशी ज़ाहिर है अपने कबीले में भी बड़ी पोस्ट पे था, सरदार का नायब था या उसी पोस्ट पे था, इसके कबीले का सरदार भी फौरन पहुंच गया। पहुंच के उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा मौला 80 कोड़े, ये आपका सिपाही है, शायर है आपके दरबार का? अमीरुल मोमिनीन ने कहा हाँ, इसको 20 कोड़े और लगाओ, 80 कोड़े और 20 कोड़े और लगाओ। पूछा 20 किस लिए? कहा एक तो इसने शराब पी 80 कोड़े उसके, 20 कोड़े इसने रमज़ान की हुरमत तोड़ी है, 100 कोड़े इसको मारो। नजाशी को 100 कोड़े मारे गए। रिजल्ट पता है क्या निकला? रात को नजाशी और उसका वो जो सरदार आया था, ये रात को कूफा से फरार हो गए और नजाशी जाकर अमीर शाम के लश्कर में शामिल हो गया। जब तक अली की सखावत थी, जब तक अली की रहमत थी, जब तक मुश्किल कुशाई थी, तब तक नजाशी साथ था। लेकिन जब मुकाबला, जब अली का सामना किया अदालत के साथ, तो वहाँ पर नजाशी फरार कर गया। अब दूसरा वाक्या सुने। अमीरुल मोमिनीन का एक चाहने वाला, कूफा का ही बाशिंदा, उसकी आदत क्या थी, वो खवारिज की जंग हो चुकी थी, नहरवान की जंग, तो उसके बाद सफीन के बाद ज़ाहिर खारजी हो चुके थे, खवारिज बहुत सारे थे। तो ये ना खवारिज के सामने मौला अली के ना फजाइल बयान करता था ये जाकर, तो वो खवारिज जो है उनको आग लग जाती थी मौला अली की फजीलतें सुन के। आज भी होता है बाज़ ऐसे फ़िरके हैं कि जिनके सामने आप मौला अली की तारीफ़ करें तो उन्हें आग लग जाती। तो ये खवारिज के सामने मौला अली के फजाइल पढ़ता था और वो बड़ा कुड़ते थे इससे, बहुत तंग थे इससे। एक दफ़ा क्या हुआ, चोरी कर बैठा, यही जो फजाइल पढ़ता था चोरी कर बैठा और पकड़ा गया और इसको मौला अली के सामने ले आएगा। जब साबित हो गया इसकी चोरी का, तो आपने इसकी उंगलियां कटवा दी। मकतब अहलबेत में चोरी की सज़ा में उंगलियां काटी जाती हैं, हाथ नहीं काटा जाता, उंगली काटी जाती। इसकी उंगलियां काटी गई, अब उंगलियां कट गई हैं, इसके हाथ में दे दी गई उंगली, कटी हुई उंगलियां हाथ में लेके ये बाहर आया। बाहर आया तो वो चंद लोग खड़े थे जिनके सामने ये मौला अली के फजाइल पढ़ता था, और वो अपने आंखों से इसको कह रहे थे देखा वो जो तुम अली के फजीलतें पढ़ते थे, देखो अली ने तुम्हारे साथ क्या किया। ये वहीं पर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया और उनसे कहता है देखो जब मैं अली के फजाइल सुनाता था तुम मानते नहीं थे, आज तो अली को मान लो। अली ऐसा आदिल इमाम है कि जब बात अदालत की आई है तो मेरा भी लिहाज नहीं किया है। दोबारा अली के फजाइल पढ़ रहा है। किसी ने मौला अली को आके खबर दी मौला जिसके हाथ आपने उंगलियां जिसकी काटी हैं आपने, वो बाहर जाके दोबारा आपके फजाइल पढ़ रहे हैं, कहा बुलवाओ उसको। उसे बुलवाया गया, क्योंकि वो ज़ाहिर है शरीयत जारी हो गई, उसका वो ख़त्म हो गया। मौला ने कहा सुना है तुमने दोबारा जाके दुश्मनों के सामने फजीलतें बयान करने शुरू कर दी? उसने कहा मौला आपने उंगलियां काटी हैं, मैं आपको और आशिक हो गया हूँ। कहा क्यों? कहा देखें मैं आपके फजाइल पढ़ने वाला, आपको पता भी था, लेकिन जब बात अदालत पर आई तो आपने मेरा लिहाज नहीं किया, मैं इस बात पर और आपका आशिक हो गया हूँ। जब अमीरुल मोमिनीन ने यह सुना तो इससे कहा मेरे करीब आओ, ये करीब आया तो आपने इसकी कटी हुई उंगलियां इसके हाथ पर रखी और अपना दस्त शफकत फेरा तो इसकी उंगलियां वापस ठीक हो गई। कहा जाओ ये अता तुम्हारे लिए दोबारा उंगलियां अली तुम्हें दे रहा है, शरीयत की तरफ से तुम्हारा वो पूरा हो गया मसला, अब अली की तरफ से दोबारा उंगलियां मिल रही हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या हम सिर्फ जाजिब सिफात में अली मौला के साथ खड़े हैं या दाफे सिफात में भी साथ हैं? याद रखें इमाम जमान के लश्कर में वो होगा कि जो दाफिया सिफात को सह सकता होगा, जो अदालत को सह सकता है। अदालत इमाम जमान तो आएंगे ही अदालत कायम करने के लिए, जो अपनी ज़ात पर, बस आखिरी दो चंद बातें हैं, जो अपनी ज़ात पर دور غیبت میں عدالت نافذ نہیں کر سکے گا، ظہور امام کے بعد بہت پریشانی ہونی اس کو. آپ لوگ یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ کچھ شیعہ بھی ایسے ہوں گے کہ جو امام زمان کے ظہور کے بعد مخالفت کریں گے. کون سے شیعہ؟ کہ جو عدالت کو نہیں سہ سکتے ہیں، جنہوں نے خود کو عدالت کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہے. آغاز کریں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں عدالت ہے یا نہیں ہے؟ کیا میاں بیوی کے رشتے میں عدالت ہے یا نہیں؟ کیا اولاد کے معاملے میں عدالت ہے یا نہیں؟ کیا عدل سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ساس بہو کے معاملے میں عدل سے کام لے رہے ہیں؟ کیا رشتوں کے موقع پر، شادی کے موقع پر جب بے شمار جہیز مانگا جاتا ہے، بے شمار زیور مانگے جاتے ہیں، کیا عدالت سے کام لے رہے ہیں؟ اگر عدالت سے کام نہیں لے رہے تو امام زمان کی حکومت میں کیسے سانس لیں گے؟ وہ تو ہے ہی عدالت کے اوپر حکومت قائم ہونی ہے، وہ تو آ رہی ہے قائم، عدالت کو قائم کرنے کے لیے. بس عزیزان محترم، کوشش کریں عدالت اپنے اوپر سے شروع کریں، اپنی ذات سے. اگر میں نے خود کو عدالت کے لیے تیار کر لیا تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ آپ لشکر امام زمان کے سپاہی ہیں. اگر صرف اٹریکٹیو والی صفات جو ہیں، ہمیں صرف وہی پسند ہیں، ہم صرف مشکل کشائی ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس مولا ہمارے مسائل ہی حل کریں، ہم نے جیسا مولا چاہتے ہیں ویسا ہم نے بننا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے مسائل سخت ہیں. نجاشیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے علی کے لشکر میں. نجاشی صفت لوگوں کی جگہ نہیں ہے کہ جب تک رحمت و مشکل کشائی اور سخاوت و شجاعت دیکھیں علی کا ساتھ دیں، جب عدالت دیکھیں تو فرار کر جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. اب ایک اور بہت خوبصورت نقطہ، آخری بات، جو بچوں سے، جوانوں سے بالخصوص اور بزرگوں سے بھی بالعموم، خواتین سے، سب سے. تو خواتین بھی کچھ دیر کے لیے اپنی جو بچوں کی باتیں آ رہی ہیں وہ خاموشی کے ساتھ یہ بات ضرور سنیں. امام خمینی نے جب اس حکومت اسلامی کا قیام عمل میں لائے تو امام خمینی نے کچھ چیزوں کا احیاء کیا. آج آپ نے سنا ہوگا دنیا میں اقوام متحدہ کے ذریعے مختلف دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مادر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ وومن ڈے ہے، یہ مختلف لیبر ڈے، اس طرح سے مختلف دن. امام خمینی نے ایک نظریہ دیا. امام خمینی نے کہا اگر یہ دن منانے ہیں تو ان دنوں کو خاص اوقات میں منایا جائے. کیا؟ اگر آپ نے ماؤں کا دن منانا ہے، آپ نے خواتین کا دن منانا ہے، تو ماؤں کا دن یا خواتین کا دن اس دن منائیں جس دن جناب سیدہ زہرا کی ولادت کا دن ہے. بیس جمادی الثانی کو ماؤں کا دن ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بیس جمادی الثانی اس خاتون کی ولادت کا دن ہے جس کے آنے کے بعد سے خواتین کو عزت ملی ہے. اس سے پہلے تو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا عرب میں. یہ وہ خاتون تھی جس قیامت کے بعد بیٹی کی عزت کے آنے پر باپ کھڑا ہو جائے، ہاتھوں کا بوسہ دے، اپنی ابا بچھائے بیٹی کے لیے. تو اگر ماؤں کا یا خواتین کا کوئی عالمی دن ہو تو وہ جناب سیدہ کی ولادت کا دن ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی طرح امام خمینی نے کہا اگر باپ کا دن منانا ہے، فادر ڈے منانا ہے، تو مولا رسول اللہ کی حدیث ہے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ امت جو ہے اس کے باپ رسول اللہ نے کہا ہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں اس امت کے. اور 13 رجب، امام خمینی کہتے ہیں اگر فادر ڈے منانا ہے تو پھر 13 رجب کو مناؤ کہ جب امت کے باپ کی ولادت کا دن ہے، اس دن فادر ڈے مناؤ، اس دن یوم پدر منانا چاہیے، باپ کا دن اس دن. تو اب کیا کرنا ہے؟ 13 رجب کو مولا کی آمد کی خوشی میں، مولا متقیان کی ولادت کا جشن، ان کی آمد کی خوشی اور اظہار کے لیے کیا کریں گے؟ ہم سب जिसके भी बाप इस दुनिया में हैं, जिसके भी बाप इस दुनिया में हैं, वो क्या करेंगे? कोई न कोई तोहफा तैयार करें, बच्चे हों या बड़े हों, छोटे हों या बड़े, अब्बा से छुपा के, बेशक पैसे उनसे ही ले लें, उनसे ये कह के न लें कि हम आपके लिए गिफ्ट लेने वाले हैं, अब्बा से पैसे ले लें खाने पीने के लिए, उसमें से अब्बा के लिए गिफ्ट लें, उनके लिए कोई कार्ड तैयार करें, कोई तोहफा तैयार करें, और वो तोहफा 13 रजब वाले दिन अपने अपने बाबा को गिफ्ट करें, और उन्होंने कहें आज मौला अली की विलादत का दिन है, मौला अली इस उम्मत के बाप थे, तो मैंने उन्हीं का सिपाही बनते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने अपने बाबा का, कि मेरे लिए जो आपने बचपन से मुझे पाला है, मेरे लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, मजदूरी की है, पसीना बहाया है, हत्ता कि बाज़ ने खून भी बहाया होता है, आपने इतनी मुश्किलात मेरे लिए बर्दाश्त की हैं, तो बाबा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने दिल में इस बात का इरादा करता हूँ, करना है हर बच्चे ने, हम इस बात का इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह आपके हुकूक़ को पूरा करें, आपका एहतराम पूरा करें, और अगर हमसे कोई भूल चूक में गलती हो गई है तो आज मौला अली की विलादत का दिन है, मैं माफ़ कर दें। ये तो हैं आप सब में से जिनके वालिद ज़िंदा हैं, जिनके वालिद ज़िंदा नहीं हैं, इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, उन सब से ये गुजारिश है कम से कम 13 रजब को टाइम निकालें, एक दफ़ा अपने बाप के कब्र पे जाएं, जाएं इसीलिए जाएं, कहें बाबा मैं आज इसलिए आया हूँ कि आज मौला की विलादत का दिन है, और वो उम्मत के बाप थे, मुझे आपकी याद आई है, मैं आया हूँ, और उस वक्त खुलूस दिल के साथ खुदा से दुआ करें। ये जो आपका जाना है ना, एक तो जाना बाप की कब्र पे जाना मोहब्बत की वजह से, दर्द की वजह से, दूसरा जब आप वहाँ बैठ के कुछ देर कुरान की तिलावत करेंगे या दुआ करेंगे, और उसके बाद दुआ में पता है क्या कहें, आप लोग दुआ में कहें खुदाया आज इस दुनिया में तेरी पसंदीदा तरीन शख्सियत मौला अली की विलादत है, मैं तुझे उन्हीं का वास्ता देता हूँ, अगर मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत होते वक्त मुझसे राज़ी नहीं थे तो तू मौला अली के सदक़े में उनको मुझसे राज़ी कर दे। ये कबूल होने वाली दुआ है, यकीनन कबूल होने वाली दुआ है। दूसरा जुमला आपने क्या कहना है, खुदाया मैं तुझसे इल्तमास और इल्तजा करता हूँ अगर मेरे वालिद आलम बरज़ख में किसी मुश्किल में हैं तो आज की मेरी इस दुआ के तुफ़ैल में उनकी मुश्किल को आसान कर दे। दूसरी दुआ का तीसरा जुमला क्या आप कहें, खुदाया अगर वो आलम बरज़ख में किसी मुश्किल में नहीं है तो मेरी इस दुआ की वजह से उनके दर्जे को और बुलंद कर दें। ये तीन दुआएं जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, चाहे हमारी मोमिनात हो, आप में से जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, तो हतमन कोशिश करें कि 13 रजब तय हो जाए मेरी और आपकी ज़िंदगी में, 13 रजब को जाना है अगर वालिद दुनिया में नहीं है उनके कब्र पे, और खुशनसीब जिनके वालिदैन इस दुनिया में हैं तो बाप के लिए 13 रजब को तोहफा गिफ्ट बेशक छोटा सा होगा, लेकिन याद रखिएगा एक स्पीकर थे वो कह रहे थे कि मुझे कहीं से पता चला कि मुझे किसी ने पूछा, किसी उस्ताद ने कि तुमने आखिरी दफ़ा अपने बाप को गले कब लगाया ज़ोर से, तो कहते मैंने सोचा तो मैंने तो लगाया ही नहीं है। उसने कहा मैंने जब सोचा तो मेरी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने अब्बा को ज़ोर से एक दो चंद कम समझे एक आध मिनट तक कब्बा को गले लगा के रखा हो। कहते उस दिन मेरे दिल में आया कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया है। कहते मैं घर गया, अब्बा जी कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा अब्बा जी उठें। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने आपको गले लगाना है। वो कहता तेरा दिमाग ठीक है? उन्होंने कहा आज ठीक हो गया है, आप उठे मैंने आपको गले लगाना। कहते अब्बा जी उठें। कहते मैंने उनको गले लगाया, एक मिनट तक मैं उनके गले लगा रहा। कहते अब्बा जी ने कुछ देर तो वो फिर देखा तो उन्होंने मुझे अच्छे तरह गले लगाया। कहते एक मिनट बाद जब हम जुदा हुए, कहते मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटा अगर इतनी ठंडक मिलने का मुझे पहले पता होता तो पता नहीं मैं कितनी दफ़ा तुझसे कहता कि मुझे गले लगा ले आकर। बाप के दिल को ठंडक मिली है बेटे के गले लगाने से। इन चीज़ों की अहमियत होती है, इन चीज़ों की अहमियत है अज़ीज़ान मोहतरम। लिहाजा इस 13 रजब को जहाँ आपने जश्न मनाने हैं, मीठा खाना है, मुबारकबादें देनी हैं, वहाँ पर अपने और अपने बाप के रिश्ते को एक दफ़ा दोबारा उसका जायज़ा लेना है, और अमीर अल मोमिनीन के विलादत के सदक़े में इस विलादत की फजीलत और बरकत को हासिल करते हुए अपने बाप के साथ इजहार मोहब्बत करना है, शुक्रिया कहना है। और इंशाल्लाह बच्चे तैयार हैं, इंशाल्लाह। अब बच्चे से मुराद क्या, क्या बाप की निस्बत से हम सब बच्चे नहीं हैं बाप के? आप सब हैं, बड़े या सफ़ेद रेश जो भी हैं, आप भी अपने बाप के हिसाब से उनके बच्चे हैं। और जिनके वालिद नहीं हैं इस दुनिया में, यकीनन जाएं, यकीन करें आलम बरज़ख में उनको बहुत बड़ा अजर तो मिलेगा, लेकिन आपके दिल को जो सुकून मिलेगा ना, वो अगर कभी मेरे साथ मुलाकात हो तो मुझे बताइएगा कि मैं गया था 13 रजब को बाप की कब्र पे, और वो सुकून मुझे नहीं मिला था ज़िंदगी में कभी इससे पहले, कि जब अमीर अल मोमिनीन की विलादत के मौके पर जब मैंने जाकर कहा था बाबा आज उम्मत के बाप की आमद है, उनकी विलादत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, और ये जो 3 दुआएं मैंने आपसे कही हैं, खुदा से दुआ है इंशाल्लाह हमें खुदा तौफीक दे कि हम तशय्यो के इस मकतब के अगले मराहिल में, ज़हनी और फ़िक्री सतह के अगले मरहलों में खुदा हमें दाखिल फरमाएँ, हमें बेहतरीन अंदाज में मासूमीन की सीरत को, ज़िंदगी को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाएँ। जितने मोमिनीन मोमिनात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जिन जिन के वालिद हयात हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएँ, उनको तूल उम्र अता फरमाएँ, और इनमें से मौजूद मोमिनीन जितने भी मुझ समेत जिनके वालिद वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, तो खुदा उनको अजर अज़ीम अता फरमाएँ। अमीरुल मोमिनीन के तुफ़ैल आलम बरज़ख में अगर उनकी कोई मुश्किल है तो उसको आसान फरमाएँ, अगर वो राहत में है तो उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ फरमा हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, आज हम सब अमीरुल मोमिनीन की विलादत और उनकी आमद के जश्न की खुशी के लिए जमा हैं, अहले बैत की खुशी का दिन है, और अल्लाह यकीनन इस शख्सियत की आमद पर बहुत खुश है। तो हम खुदा से उन्हीं के वसीले से दुआ करते हैं कि इस साहिब खाना समेत जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ फरमा हैं, खुदा सब की हाजात को पूरा फरमा, सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, तकलीफ़ों को दूर फरमा, परेशानियों से नजात अता फरमा, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। खुदा उनमें से जो मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल नसीब फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, जो बेगुनाह असीर हैं उनको रिहाई नसीब फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, रिज्क में वसअत और आमदन में इजाफ़ा फरमा। खुदा जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़गार अता फरमा। खुदा सबको कामयाब व कामरान फरमा। परवरदिगार तमाम मुश्किलात, चाहे वो हमारी ज़ाती हों, दुनिया की हों, इज्तिमाई हों, इन सब मुश्किलात का हल यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में है। खुदा इल्तिजा करते हैं कि इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, रहबर मुअज़्ज़म की उम्र दराज फरमा, आयतुल्लाह सिस्तानी और दीगर मराजे का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं भी बरसर पेकार हैं, बिलखसूस यमन, बहरीन, शाम व इराक, लुबनान, फ़लस्तीन, कश्मीर, हिंदुस्तान, जहाँ कहीं मुसलमान बरसर पेकार हैं, खुदा उनको फ़तह कामरानी नसीब फरमा, उनकी मदद व नुसरत फरमा, दुश्मनान इस्लाम और अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमा।